मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 25 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने एक अलग ही तरह के विषय को चुना है और हो सकता है कि मेरे इस विषय से आप में से बहुत से लोग इत्तफाक न रखते हों, क्योंकि यह मेरा अनुभव रहा है कि कुछ लोग इसके विरोध में भी होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलिए, मैं जिस चीज को मानता हूं कम से कम उसे तो आप लोगों तक पहुंचाऊं। हां, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं ये पूरी आपको आजादी है, आप सब इसे सुने, इस पर विचार करें, या आपको ठीक न लगे तो न भी सुने। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी बात कही जा रही है तो एक बार तो सुनना ही चाहिए और सुनने के बाद उसको तुरंत रिजेक्ट भी नहीं कर देना चाहिए, उस पर थोड़ी देर विचार करना चाहिए। हाँ, विचार करने के बाद अगर सहमति नहीं बनती है तब डेफिनेटली उसे फिर रिजेक्ट करने में कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कला से जुड़ाव विषय पर। यानी कि हम सब जो मनुष्य हैं, हमें चाहिए कि हम किसी न किसी कला से किसी न किसी रूप में जुड़े रहें। आज मैं इसी विषय पर अपनी थोड़ी सी बातें आपके सामने फ्रेंड रखना चाहूंगा। देखिए, मैं जब कह रहा हूं कला से जुड़ाओ, तो पहले ही बात तो मैं यह स्पष्ट कर दूं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबको कलाकार बनना है, राइट? कला से जुड़ाव का मतलब है कि ठीक है, अगर कोई कलाकार है तब तो सीधे सीधे उसका जुड़ाव है ही, और सच पूछे तो ऐसे लोगों को मेरा ये लाइफ मैनेजमेंट सुनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत आगे की चीज हो गई कि वो कलाकार ही है। लेकिन हम अगर कलाकार नहीं हो सकते, क्योंकि हर कोई तो देखिए नहीं हो सकता, लेकिन कला प्रेमी तो हो सकते हैं, तो मेरे इस जुड़ाव को आप कला प्रेमी के रूप में ही लेकर चले कि मैं ये कहना चाह रहा हूं अप्रत्यक्ष रूप से कि हमें कहीं ना कहीं कला प्रेमी होना ही चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि कला से मेरा मतलब क्या है। मित्रों, कला से जो मेरा मतलब है वो किसी एक कला से नहीं है। देखिए, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, इसके बहुत से अंग हैं। मैं अगर आर्किटेक्ट हूं या किसी भवन को देख करके उसकी प्रशंसा करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे पर्यटन में आप देखिए कि हम सब जाते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, किले देखते हैं, मंदिर देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कला के प्रति हमारा जुड़ाव ही है। तो स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, मूर्तियों की भी हम सराहना करते हैं, चित्रकला है, चित्र तो बहुत ही कॉमन चीज है, उसकी सराहना करते हैं, पसंद करते हैं, चित्रकला भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जो म्यूजिक और नृत्य, ये तो बहुत ही वेल नोन आर्ट फॉर्म है, मतलब हर कोई इसे जानता भी है और सच पूछे तो थोड़ी बहुत मात्रा में पसंद भी करता है, क्योंकि ये बहुत ही आम लोगों के लिए है, आम तरीके से है और बहुत अधिक मनोरंजक भी है, इसके लिए हमें किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है, हम म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमें सरगम पध निशा नहीं आता, वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में ABCD नहीं आती है, लेकिन अगर कोई अच्छी धुन बज रही है तो हमारे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, मन खुशी से भर जाता है। कभी कभी तो म्यूजिक में इतनी ताकत होती है कि हमारी आंखों में वो पानी तक उतार देता है, म्यूजिक की ताकत होती है। नृत्य भी ऐसा ही है, हम नृत्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन पदचाप और शरीर की लय हमें इतना आकर्षित करती है कि मुंह से अचानक निकल पड़ता है कि वाह क्या बात है, तो यह भी कला का रूप है। दोस्तों, साहित्य अपने आप में कला का रूप है ही, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। हम सब कविता पढ़ना चाहते हैं, कहानियां सुनना चाहते हैं, और इनफैक्ट हम जो फिल्में पसंद करते हैं, आप देखिए कि फिल्म भी क्या है, फिल्म एक ऐसी विधा है जिसमें कला के ढेर सारे रूप इकट्ठे हो गए हैं। उसमें आपको अभिनय भी दिखाई दे रहा है, जिसका आर्ट फॉर्म नाटक है, थिएटर है, थिएटर कला का रूप है, तो आपको फिल्म में थिएटर भी दिखाई दे रहा है, म्यूजिक डांस वहां है ही, पेंटिंग से सारी चीजें हैं वहां, वहां तो सच पूछे तो फोटोग्राफी ने भी अब एक अच्छा खासा कला का रूप ले लिया है, आपको उसका भी आनंद मिल रहा है, दृश्यों के आनंद आप ले रहे हैं, जिसको आप भ्रमण का कह लीजिए। तो मित्रों, मेरे कहने का कुल मतलब यह है कि इसमें से कोई भी कम से कम एक आर्ट फॉर्म ऐसा होना चाहिए जो हमारी अपनी पसंद का हो। कई अगर हैं तो कोई बात नहीं, बहुत लोग होते हैं जो कईयों को पसंद करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ को तो बहुत पसंद करते हैं और कुछ को बिल्कुल नापसंद करते हैं। तो अगर आप किसी को बिल्कुल नापसंद करते हैं तो उसमें कोई एतराज की बात नहीं है, भाई हमको नहीं समझ में आता, जैसे अब क्लासिकल म्यूजिक मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती, अब मैं क्या करूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे नापसंद ही करता हूं, हाँ मेरी अगर च्वाइस होगी तो मैं सुनने नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरे जो म्यूजिक फॉर्म है उन्हें डेफिनेटली मैं सुनने जाऊंगा। तो ये अपनी अपनी पसंद है। तो मित्रों, किसी न किसी कला रूप से हमें जुड़े ही होना चाहिए। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आज के माहौल में ये शायद और ज्यादा जरूरी हो गया है, इसलिए कि देखिए हम अब जिस युग में आ चुके हैं, है ना, हमारा जीवन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर धीरे धीरे आधारित होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमें श्रम की जरूरत ही नहीं है, सच पूछे तो हमें अब हस्तकला की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें अब टेक्नोलॉजी पर आधारित होती जा रही है। तो ऐसे में जो कलात्मक विकास हमारे अंदर होना चाहिए वो धीरे 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 अनजाने में ही रुक रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। जैसे आप देखें कि आजकल आप चलिए किसी को व्हाट्सएप करना चाहते हैं, राइट, तो अब आप देखें कि व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप कुछ अक्षर लिखते हैं, इसके बाद उसी से रिलेटेड जो अक्षर है वो उभर करके आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं, उसे टच कर दीजिए, पूरा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। यहां तक कि अगर कुछ विशेष वाक्यों का आप बार बार प्रयोग करते हैं तो पता लगा पूरा का पूरा वाक्य ही लिख करके आ गया, आप उसे टच कर दीजिए, वो व्हाट्सएप के आपके पूरे के पूरे मैसेज वाले पोर्शन में पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार जो आपने सेंटेंस लिख दिया, जैसे मान लीजिए कांग्रेचुलेशन माई डियर आपने भेजा किसी को, अब आप जैसे ही कांग्रेचुलेशन टाइप करेंगे माई डियर शब्द आ जाएगा, तो अब आप 20 लोगों को भेज रहे हैं, 50 लोगों को भेज रहे हैं, तो सब में कांग्रेचुलेशन माई डियर रेस्पेक्टेड सर इसी तरह के शब्द आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो कांग्रेचुलेशन माई डियर जो तीन शब्द है इसे बदलने की नौबत ही नहीं आ रहे, और आपको और हमको भी यही सुविधा लगती है कि यार अब कौन नया शब्द ढूंढे और फिर नया टाइप करे, जल्दी से इसको टच कर दो और निपटाओ, बात खत्म हो गई, वो उस तक पहुंच जाएगा, वो समझ जाएगा, बात खत्म हो गई। मतलब ये हो गया ना कि अब जो साहित्य का एक जो छोटा सा हिस्सा है लिखना, लिखने की बात खत्म हो गई, मतलब अब धीरे धीरे साहित्य हमारे अंदर से गायब होता जा रहा है, हमारी वो जो रचनात्मकता है वो खत्म होती जा रही है। चिट्ठियों का जमाना पता नहीं बीते युग की बात अब तो लगने लगी है मित्रों, चिट्ठी लिखनी बंद हो गई है, उसकी जगह फोन ने ले लिया है, या आप कह लीजिए मैसेज ने, एसएमएस ने ले लिया है, व्हाट्सएप जैसी चीजों ने ले लिया है। तो आप देखिए कि ये पूरा का पूरा हमारा जो अभी का युग है और आगे आने वाला भी जो युग है, अब ऐसा मालूम पड़ता है कि वो हमें कला से दूर करता जाएगा। जो रियल जो आर्ट फॉर्म है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अब आप टीवी चैनल्स बहुत से आ गए, आप टीवी देख रहे हैं तो एक तरीके से कला को आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ रूप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कला उसमें मौजूद है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक जीवंत कला होती है उसकी बात अलग होती है, और जो एक मैकेनिकल आर्ट होता है उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी एक अलग तरीके की बात आपसे करना चाह रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि कला से जुड़ाव हमारा होना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है। होता क्या है कि जब हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा तकनीकी पर आधारित होता जाता है तो हमारी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो लगातार कम होती जाती है, और हम चीजों को रिपीट करने लगते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी देखिए चीजों को क्रिएट नहीं करती है, वह चीजों को रिपीट करती है, वह उन्हीं चीजों को दोहराती है, राइट। तो हमारा दिमाग भी उन्हीं चीजों को दोहरा रहा है, हमारे इमोशंस भी उन्हीं चीजों को दोहरा रहे हैं, थॉट्स भी वही वही आ रहे हैं, लैंग्वेज भी जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी लगभग लगभग रिपीट हो रहे हैं। तो होता यह है कि देखिए आप सबके जीवन का ये अनुभव है, हम सब किसी चीज से ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो किन चीजों से हम ऊबते हैं, किन चीजों से हम बोर होते हैं, तो आपका उत्तर सर बिल्कुल सीधे सीधे होगा कि सर जो हम बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, करते करते ना ऊब हो जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमारे दिमाग में वही वही थॉट्स आ रहे हैं, वही वही लैंग्वेज आ रही है, वही वही इमोशंस आ रहे हैं, हम तो क्या हम सही मायने में उन्हीं उन्हीं चीजों को नहीं कर रहे हैं? और अगर हम उन्हीं उन्हीं चीजों को कर रहे हैं तो डेफिनेटली अंदर एक किस्म की ऊब तो पैदा होगी जो हो रही है, जिसे आप एक लिटरेरी लैंग्वेज में कह लीजिए कि धीरे धीरे हो ये रहा है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं डेजर्ट का जो एरिया है, जो रेगिस्तानी जो इलाका है, फैलता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कभी कभी मित्रों की कहीं कुछ ऊसर तो नहीं हो रहे हैं, हम अंदर से शुष्क तो नहीं हो रहे हैं, अंदर से हम सूख तो नहीं रहे हैं, ऐसा हो रहा है। आगे और ज्यादा होता जाएगा, मुझे कुछ ऐसा ही मालूम पड़ने लगा है मित्रों। अब सवाल यह है कि अब इस रेगिस्तान में हरियाली की खोज कैसे की जाए, कैसे हरियाली को तलाशा जाए, या हम अगर तलाश में नहीं भी निकल रहे हैं तो अपने इस रेगिस्तान के बीच में ही कैसे एक छोटा सा नखलिस्तान क्रिएट करें कि कम से कम कहीं तो पानी दिखाई दे, कहीं तो इस पूरे के पूरे रदड़ फदड़ वाली जगह में कहीं तो थोड़ी सी नमी का एहसास हो, पूरे के पूरे इस ऊबड़ खाबड़ माहौल में, उड़ते हुए धूल के माहौल में कहीं तो तरलता मिले। ये जरूरी है क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। तो दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये जो कला के रूप हैं, ये बेसिकली रेगिस्तान के बीच में तैयार किए गए, बनाए गए या बन गए नखलिस्तान की तरह है। पहले शायद उसकी इतनी जरूरत न रही हो, जबकि उस समय तो कला का बहुत ज्यादा फैलाव था, लेकिन अब उसकी मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत होती जा रही है। इससे जिंदगी की गुणवत्ता में एक जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन कैसे आ सकता है मित्रों, इसके बारे में मैं अब आपसे कल के लाइफ मैनेजमेंट में बात करूंगा। अब वक्त हो चला है, आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।